ओम शांति। बाबा ने कितना सुंदर और कल्याणकारी यह प्रोग्राम हम सभी को सारे विश्व में, जिसमें हम सभी मिलकर एक घंटे के लिए बैठे, बेशक हम कहते हैं कि ये विश्व शांति के अर्थ है, परंतु इसमें अपने को भी जो समय मिल जाता है और उस समय में कितना कुछ हम कर पाते हैं, कितने तरह के अभ्यास हम कर पाते हैं, और खुद को भी पता चलता है कि हम कितनी देर तक शांत स्थिति में रह सकते हैं। आज तो 2 घंटे की बट्टी थी, 5:30 से बैठे हैं, लेकिन 1 घंटा तो सभी बैठे ही थे। तो इसमें स्वयं का सोचें, बाबा का सोचें, विश्व का सोचें, या कुछ न सोचें, क्योंकि शांति में रहना है तो शांत में निर्संकल्प अवस्था भी चाहिए और शांति का अनुभव भी चाहिए। तो मैं तो सबसे सहज मुझे लगता है कि शांति के सागर बाबा हैं, तो पहले तो शांति के सागर बाबा में समा जाओ, इतने समा जाओ, इतनी गहराई में जाओ, इतनी गहराई में जाओ कि खुद शांत स्वरूप हो जाओ। और जब खुद शांत स्वरूप हो जाते हैं तो जैसे ये कोई ऐसा नहीं होता है कि हम सोचें कि हमको विश्व को किरणें देनी है, लाइट देनी है, परंतु दूसरी स्थिति जो बहुत इसमें मदद करती है वो है लाइट हाउस और माइट हाउस बन के बैठने की। क्योंकि उसमें जिन भी आत्माओं को सारे विश्व में आज अशांति है, किसी को शक्ति की जरूरत है, किसको शांति की जरूरत है, किसको किसी भी तरह की शक्ति की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, परंतु जैसे कि एक लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति में जब बैठ जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक तो उपराम हो गए, दूसरा एकाग्रता भी हो जाती है। तो इसमें कोई बार बार ये ध्यान नहीं रखना पड़ता है कि मुझे विश्व को कुछ देना है, परंतु एक स्थिति ऐसी बना करके हम बैठ जाते हैं लाइट हाउस और माइट हाउस की। और तीसरा मैंने देखा कि एक बहुत अच्छा अभ्यास जो आज मुझे एक नेचुरली चला वो स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठने का। क्योंकि ये नहीं कि स्वदर्शन चक्रधारी होने के लिए कोई ये संकल्प चलाने पड़ते हैं कि अब हम संगम पर हैं, फिर हम सत्युग में, तो पहले करते थे ना, लेकिन जैसे कि एक बिल्कुल सुदर्शन चक्रधारी बनने का मतलब ये है कि जैसे एकदम पूरा अंदर में अपना दर्शन होता है, बहुत ही जैसे कि कैसे एकदम शांत स्वरूप में आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, न केवल ये लेकिन शांति के लिए, क्योंकि शांति में देखो धैर्यता भी चाहिए, शांति के लिए सुख भी चाहिए। जैसे दुनिया में अगर हम शांति शब्द का प्रयोग करते हैं तो कई लोग कहते हैं भाई चलो कॉम्प्रोमाइज कर लो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई भी किसी का संस्कार, कोई भी पास्ट की बात, जैसे शांति के लिए अगर हम देखें तो फॉरगिवनेस, क्षमा भाव, कई धारणाएं आ जाती हैं। तो जब सुदर्शन चक्रधारी बन के बैठते हैं तो कई गुण मन में जैसे कि आ रहे थे कि शांति बनाए रखने के लिए, जिसमें सब अपना शांत स्वरूप स्थिति भी हो, कहीं पर कोई मतभेद होता है उसमें भी शांति चाहिए, कई तरह से हमको शांति बनाए रखें, मन शांत रहे, कोई हिसाब किताब है, या चलो किसी ने कोई बात आपके लिए कही, कोई क्रिटिसिज्म है, कोई कमेंट्स होते हैं, तो शांति बनाए रखने के लिए जैसे कि एक ऐसा लगा कि स्वदर्शन चक्रधारी और फिर स्वराज्य अधिकारी कि ऐसी स्थिति है ये, जैसे कि राजा बन करके हर चीज पर अपना कंट्रोल है, कर्म इंद्रियों पर, ज्ञान इंद्रियों पर, मन के संकल्पों के ऊपर। तो जैसे ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे स्वराज अधिकारी, क्योंकि अभी सत्युग में जाएंगे, विश्व के मालिक बनेंगे, लेकिन अभी से ही वो इतना अच्छा लग रहा था कि स्वराज अधिकारी होकर के बैठे हैं। तो जैसे ऐसा भिन्न भिन्न स्थितियां जो नेचुरली आती जाती हैं, जैसे आज मुझे चार स्थितियों का अनुभव जैसे कि हो रहा था, बैठते ही पहले तो कि शांति के सागर में समा जाओ समा जाओ समा जाओ, फिर इतना जैसे कि खुद का शांत स्वरूप, और उसके बाद जैसे कि अब जब विश्व की बात आती है तो लाइट हाउस माइट हाउस बन के बैठ जाओ। फिर उसमें मैंने देखा कि स्वदर्शन चक्र भी चला और साथ साथ स्वराज अधिकारी का अनुभव जो है, तो मैंने ये सोचा कि बेशक हम विश्व शांति के लिए बैठते हैं, क्योंकि हमारे पास ही सारे वर्ल्ड में कोई भी ऐसे आत्मा नहीं है जिनको बाबा ने जिनको ये ज्ञान है जो बाबा ने हम बच्चों को दिया है कि बच्चे विश्व में शांति होगी। दुनिया में आप देखेंगे कहेंगे कि शांति होनी चाहिए, पीस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, फिर कहते हैं शांति तो कभी हो नहीं सकती है। कोई ऐसा समय नहीं था कि विश्व में सिर्फ शांति थी, लड़ाई हमेशा चलती आई है, दुख हमेशा ही था, विकार भी अनादि काल से चलते आए हैं, सब कुछ है ही। तो वो शांति का प्रयास करते हुए भी उनके पास वो विजन नहीं है कि हाँ विश्व में शांति थी। हमसे कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि आप लोग इतने ब्राइट कैसे रहते हो, मतलब इतने फ्रेश कैसे रहते हो, आप भी तो समस्याओं के बारे में सुनते हो, आपके सामने भी इतनी समस्याएं आती हैं। अभी भी कोई हम लोगों ने एक जो भी आईपी संपर्क वाले थे तो करीब 100 के करीब उनको बुलाया था जनवरी में, तो उसमें यही चर्चा चल रही थी। तो एंड में वो लोग पूछ रहे थे कि हम लोग तो इतने खास करके जो शांति के लिए कार्य कर रहे होते हैं, कोई समाज सेवा कर रहे होते हैं, तो वो सभी बहुत डिप्रेस, अंदर में भारीपन उनको बहुत होता है, क्योंकि कहते हैं हम थोड़ा सा ही करते हैं पर समस्याएं तो बहुत बड़ी हैं। तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि हम ब्रह्मा कुमारियों के पास जब आते हैं तो आप लोग इतने लाइट रहते हो, आप लोगों के चेहरे इतने खुशी के लगते हैं, आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल होती है, उसका कारण क्या है? तो मैंने कहा कि हम लोगों पर भी असर हो सकता है वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का, हिंसा का, नेगेटिविटी का, लेकिन क्योंकि हमको हमेशा ये याद रहता है कि बाबा ने हम बच्चों को कैसे नई दुनिया होगी, उसमें विश्व शांति होगी, हर एक ऐसी दुनिया होगी जिसमें शांति होगी, अशांति बिल्कुल नहीं होगी। अगर ये विजन न रहे तो शायद हम लोग इतने पॉजिटिव या अब पुरुषार्थ हम करते रहते हैं, सेवा हम करते रहते हैं, कभी ऐसा नहीं होता है कि हम सोचे नहीं ये तो कुछ नहीं हो रहा है, नहीं सेवा हम करते ही रहते हैं करते ही रहते हैं, उमंग उत्साह भी बना रहता है। उसका मुख्य कारण एक तो बाबा ने जो हम बच्चों को ये दिव्य साक्षात्कार कराए हैं कि नई दुनिया कैसी होगी, शांति की दुनिया होगी, और कराने वाला कौन है, शांति की स्थापना करने वाला कौन है। अगर ये दोनों बातें हमारी बुद्धि में ना हो तो हम लोग भी निराश हो सकते हैं, हम लोगों पर भी जो प्रॉब्लम्स है उनका असर आ सकता है। तो जब हमने उनको ये बताया, फिर उसके बाद यूएन में हमने एक मीटिंग की, जो यूएन में मददगार थे अभी तक, तो साल में एक बार उनको बुलाते हैं यूएन ऑफिस में, तो भोग भी लगाया उनके साथ, थोड़ा शेयर किया, तो वो लोग भी यही कह रहे थे कि जब भी हम आप लोगों से मिलते हैं तो हम लोगों में इतना फर्क पड़ जाता है, आप हमको ऐसे बुलाते रहा करो, नहीं तो हम तो निराश हो जाते हैं, पर ऐसे हम हल्के रहें, इस तरह से होप बनी रहे, आशा बनी रहे। तो इस तरह से हमने देखा कोई भी धार्मिक इंटरफेथ वाले हैं या जिनकी भी सेवा करते हैं ना, तो वो लोग हम लोगों की इस तरह की एनर्जी जो है जिससे हम पॉजिटिव रहते हैं, होपफुल रहते हैं, हमेशा करते ही रहते हैं। फिर वो पूछते हैं रिजल्ट, हमने कहा रिजल्ट का तो हम सोचते ही नहीं है, कर्म श्रेष्ठ हमसे हो जाए यही तो सबसे बड़ी सफलता है ना। कोई श्रेष्ठ कर्म की सफलता उसकी रिजल्ट नहीं है, परंतु कर्म कर सकते हैं हम श्रेष्ठ इतने वर्ष से, ये सबसे बड़ी जैसे कि सफलता है। बाकी तो आज मेरा सारा दिन बहुत इस पर विचार चला कि दृष्टि की रचना कैसे हो। बाबा ने कहा तो दादी जानकी को, आप लोगों में से किसी ने विचार किया उसके ऊपर? बाबा ने कहा कि अभी दृष्टि से रचना रचो। किया किसी ने विचार? सकन चला होगा ना, क्योंकि क्या होता है कोई भी बात एक ऐसी ले लेते हैं सवेरे मुरली में, फिर मैंने देखा जब भी टाइम था बीच में फिर मेरा विचार चले कैसे हो, कैसे होता है दृष्टि की रचना। है अनुभव आप में से किसी को दृष्टि की रचना का? जयंती बहन को है। और तो क्या क्या अर्थ हुआ दृष्टि की रचना जब हम कहते हैं? जयंती बहन कैसे कैसे दृष्टि की रचना? एक तो अपना अनुभव आपका होगा ना, साकार बाबा ने दृष्टि दी, लेकिन अभी आपके द्वारा कैसे वो दृष्टि की रचना, इसके कुछ अनुभव हैं? होंगे तो जरूर ना, जरा माइक देना एक बार, क्योंकि बहुत रेली जो बाबा ने कहा ना तो मेरे को एकदम आया, फिर बाबा ने इसका संबंध जोड़ा वृत्ति से कि अंदर में जो वृत्ति है, फिर वृत्ति का अगर संबंध देखें तो स्मृति से है। तो स्मृति को ऐसे हम लोग अवेयरनेस कहते हैं, पर आज मुझे ख्याल आया कि स्मृति को हम लोग मेमोरी ट्रैक जो है ना जिसको कहते हैं, कि जैसे हमने किसी को देखा, देखते ही ख्याल आया आपसे यहां मिले थे, आपने ये कहा था, ये था, ये था, ये था, सारी बात स्मृति में आ जाती है। अब वो स्मृति में अगर तो वो सब अच्छा हुआ था तो वृत्ति है आप बहुत अच्छे हैं, आपसे मिस नहीं है, लेकिन कोई बात प्लेजेंट नहीं हुई थी तो एकदम वृत्ति में आ जाता है, थोड़ी दूरी महसूस होती है, तो वो दृष्टि से दृष्टि में भी वो रिफ्लेक्शन जैसे कि आ जाता है। तो मुझे याद है एक बार दादी जानकी ने, हम आरसीओस बैठे थे तो बहुत अच्छी बात बताई दादी ने, कहा अगर स्मृति में कुछ भी मिक्स है तो सामर्थ्य आ नहीं सकती है। 3-4 साल पहले मैंने ये सुना था, उससे मुझे हमेशा ध्यान रहता है कि अभी देखो मुझे स्मृति में कुछ मिक्स तो नहीं हो रहा है। आपको देख करके क्या मुझे इस समय पर आत्मिक स्थिति से, आत्मिक स्वरूप से मैं आपको देख रही हूँ उस अवेयरनेस से, या मुझे आप कल क्या थे, परसों क्या थे, क्या हुआ था, नहीं हुआ था, तो क्या मिक्स तो नहीं हो जाता है? तो इतना मुझे अटेंशन रहता है कि आत्मिक स्मृति चाहे बाबा की स्मृति में कुछ भी मिक्स ना हो तो सामर्थ्य नहीं आएगी। सामर्थ्य तब आएगी जब एकदम प्योर, एकदम पवित्र वृत्ति स्मृति हो, तो फिर वैसी वृत्ति होती है। जयंती बहन आप है कोई अनुभव सुनाएंगे? आपके पास माइक आया है, यहीं से सुना दो। नहीं, दृष्टि की रचना कैसे रचे, आपको अपना अनुभव नहीं होगा, दादी का अनुभव होगा कि वो कैसे रचना रचती है। उस समय दादी ने बाबा को जवाब दिया कि अभी इस पर और ध्यान देंगे, क्योंकि ज्ञान सुना करके तो, लेकिन मेरा अटेंशन इस पर गया खास। अभी तक भी मेरे को इतना वो नहीं हुआ कि बाबा जो कह रहे हैं ना दृष्टि की रचना, इसका मतलब कि जो भी सामने आए, जैसे कि दृष्टि से उसके अंदर उसकी दिव्यता है, एक रचना होती है जन्म, जैसे कि जन्म मिला, दूसरी रचना का मतलब ये भी हो सकता है कि उस समय उसके अंदर क्या उत्पत्ति होती है, क्या याददाश्त आती है उसके अंदर, किस तरह की अंदर उसके रचना चलने लगती है या विचार चलने लगते हैं। तो कैसे दृष्टि की रचना, जैसे कोई बाबा कहता है बहुत दुखी है, कोई बहुत अशांत है, कोई चिंता में है, कोई भारी है, परंतु हमारी जो स्नेह की दृष्टि, बाबा के प्यार की दृष्टि, जैसे मुझे बहुत बार अपना अनुभव है और दादी से कईयों को अनुभव होता है कि उनकी नेत्रों से हमको जैसे कि बाबा का प्यार अनुभव होता है। जब भी हम दृष्टि लेते हैं हमको बाबा का प्यार अनुभव होता है। किसी ने कहा कि जब दृष्टि लेते हैं तो एकदम अपनापन लगता है। तो इस तरह से जैसे दृष्टि के जो अनुभव है, तो नई रचना भी रचती है, परंतु रचना जो रची हुई है उसमें भी उपालना मिले, तो इस तरह से हमारे दृष्टि से, परंतु उसका जो होमवर्क करना पड़ेगा वो होगा वृत्ति और उस साथ साथ से मृत्ति। अभी दो थोड़े दिन पहले भी बैठे थे हम लोग, तो दादी जानकी ने यही कहा कि एक संकल्प भी, पिछला संकल्प उसमें मिक्स ना हो। तो उसमें जैसे कि एक अपना अनादि स्वरूप, अपना निजी स्वरूप कि मैं शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, वो इतना अंदर में इमर्ज रहे जब भी, तो किसी को भी देखें तो उस आत्मिक भाव से देखें। तो अभी जैसे कि ये प्रैक्टिस करना, एक लक्ष्य रखना, कई अनुभव सुनाते हैं कि आप लोगों की लौकिक में भी कई लोग कहते हैं कि जब हम आप लोगों को देखते हैं तो आपकी आंखें, किसी ने कहा आपकी आंखें क्लीन बहुत है, तो उसका कहने का मतलब क्लीन से ये नहीं था कि साफ है, कहते हैं जैसे कि कुछ एकदम हर एक चीज इतनी जैसे साफ लगती है, क्योंकि दिल साफ है, संकल्प शुद्ध है, तो दृष्टि की रचना जो है, फिर उसके साथ साथ जैसे आज बाबा ने खास ये बात पर भी ध्यान दिया कि आप किसी को भी अपलिफ्ट करने के लिए, किसी के भी कल्याण करने के लिए, क्योंकि उदारता, परंतु दूसरा फिर बाबा ने कहा आधार मूर्त बनना होगा। तो मैं सोच रही थी कि आजकल देखो हम लोग को सपोर्ट, इसकी सपोर्ट, उसकी सपोर्ट, इसकी सपोर्ट, पर बाबा जब कहता है कि आधार मूर्त बनना होगा तो वो किस हिसाब से? सपोर्ट तो सभी कहते हैं, हमको अनुभव होता है, लेकिन बाबा जो कह रहे थे कि आधार मूर्त बनना है तो उसका तो अर्थ थोड़ा डिफरेंट होगा ना। कैसे आधार मूर्त हमको बनना है तब हम उधार मूर्त बन सकेंगे? तो उस समय पर जैसे कि बाबा जो कहते हैं कि बच्चे कल्प वृक्ष में आप लोग तने में बैठे हो, रूट्स में हो, तो हमेशा जैसे कि हमारी स्थिति, हमारी तपस्या, हमारा त्याग, जो कुछ भी है वो जैसे कि आधार, उसका आधार बने। तो ये सपोर्ट की बात नहीं है, आधार मूर्त का मतलब मैं सपोर्ट बनूं किसी की, परंतु मेरी जो ड्यूटी है अपने को ऐसे निमित्त समझें जैसे कि हम फाउंडेशन में हैं और हमें उसको होल्ड करके रखना है, यानी हमको अपनी स्थिति के आधार से, जैसे हम कहते हैं यज्ञ चल रहा है, तो जो स्तंभ है, जो आधार है उसके, जिन योग युक्त अवस्था है, जिनकी जो तपस्वी है, त्याग है, वो सब उसका सपोर्ट बन जाता है। तो ये सपोर्ट डिफरेंट हो जाता है ना, कि जैसे आजकल हम समझते हैं इसने मेरे को सिंपथी दे दी, इसने मेरे को सपोर्ट दे दी। बेशक आजकल सबको सिंपथी की बहुत जरूरत है, किसी की बात होती है आप ध्यान से सुनो, थोड़ा सा भी अटेंशन देके सुनेंगे देखो उसके कितने दुख दूर हो जाते हैं। परंतु ये हो गया जैसे लौकिक रूप से, और आवश्यकता भी है, गुण भी है, परंतु बाबा जब कहते हैं कि आधार मूर्त बनो तो वो आधार मूर्त बाबा का है कि अपना जो कुछ पुरुषार्थ है, जो भी स्थिति है, आपकी जो भी प्राप्ति है, वो जैसे कि आधार बन जाएगा, उससे वो नर्चरिंग मिलेगी, उससे वो पालना मिलेगी, उससे वृद्धि होगी। तो अगर उससे कनेक्ट करते हैं तो एक बेहद की जिम्मेवारी और अटेंशन भी बहुत रहता है और खुशी भी रहती है कि मेरे पास जो भी कमाई हो रही है या जो भी मैं स्थिति बना रही हूं उससे कितनों को प्राप्ति हो रही है। मेरे को तो आजकल यही लगता है दो संकल्प पांच भी व्यर्थ जाए, अरे इससे तो कितनी सेवा हो सकती है, अपना ही खाता जमा कर लो, किसी का कल्याण हो जाएगा, कुछ विचार सागर मंथन कर लो, तो एक हॉबी बन जाती है, एक नेचर बन जाती है कि जितना हो सके शॉर्ट कोई भी बात है उसके बहुत विस्तार में न जाके जितना जरूरी है सुनो, सुना करके, और वही टाइम अगर हम अपनी कमाई में, बाबा आजकल कहते हैं कि खाते जमा करने हैं, एक्यूमुलेशन होनी चाहिए, तो क्यों ना मैं अपने ये भी जो संकल्प है, ये भी जो क्षण है, वो अपने खाते जमा कराने में लगाऊं। और सबसे बड़ी बात तो आजकल इतनी आवश्यकता है सबको कि मेरे थोड़े समय के भी जो शुद्ध संकल्प है, पावरफुल संकल्प है, बाबा की याद के संकल्प है, वो एकदम किसी न किसी को प्राप्ति करा देते। मैं कई बार अनुभव करती हूँ उस समय, फिर कभी कभी तो फोन भी आ जाता है, जैसे मैं बैठी हूँ बाबा की याद में कोई भी दिन को या मेडिटेशन में जब बैठते हैं तो हमेशा उसके बाद दो तीन लोग कोई ऐसे फोन आ जाएंगे, हमको ऐसा लगा, हमको ऐसा लगा, आज हमको ये प्राप्ति हुई। तो एकदम आता है कि हमारी स्थिति से, हमारे पुरुषार्थ से कितनों, एक तो कितनों का आधार है और कितनों के हम आधार बन जाते हैं। तो अगर ऐसे समझते हैं तो समय जो है और संकल्प, जो आदादी गुलजार ने कहा ना कि अगर हम समय के मूल्य को समझे, कितना महत्वपूर्ण टाइम है, तो मुझे किस में स्पेंड करना चाहिए। हालांकि कार्य व्यवहार, सेवा, फिर ये सब जितना भी परिस्थिति, ये तो ड्रामा के सीन्स हैं। आज एक पूरी हुई, कल दूसरी शुरू होंगी, परसों और होंगी, और ये भी पता है कि एंड तक कुछ न कुछ दो तरह की परीक्षाएं, कुछ माया परीक्षाएं लेती है, फिर बाबा भी तो परीक्षा लेते हैं ना। माया जब परीक्षा लेती है तो हमारी सेंसिटिविटी, हम सेंसिटिव है, उसको टच करती है, अच्छा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो ये माया परीक्षा लेती है। और बाबा जो परीक्षा लेते हैं, तो किसी ने पूछा क्या फर्क है, कैसे पता चले माया टेस्ट ले रही है बाबा ले रहे हैं। माया तो ह्यूमिलेट करेगी ना, क्या करेगी माया, इरिटेट करेगी, फ्रस्ट्रेटेड करेगी। माया तो सिर्फ आप लोगों को, इसलिए हम सबको आती है, जैसे कि हम माया भी समझती है कि ये प्रभु के लायक बने। तो बाबा के जो टेस्ट होते हैं उसमें आज्ञाकारी रहना होता है, वो रेडी रहना होता है। बाबा हम बच्चों को समय पर, बाबा ने डायरेक्शन दी, बाबा मैं बाद में करूंगी, आपको मालूम है दादी तो बहुत बातें सुनाती है, बाबा बुलाते थे, हम कहे हम बिजी हैं, तीन मिनट पांच मिनट के बाद जाओ तो बाबा जैसे कि बुलाया ही नहीं था। बाबा का बुलावा है ना, काल का बुलावा है, कुछ भी है, कुछ भी कर रहे हैं, जो छोड़ के भाग के पहुंच जाता था तो बाबा उसको उस तरह से बात करते थे। तो इस तरह से भी अगर हमको ये रहे बुद्धि में पूरी तरह से, आज की मुरली पर काफी विचार मेरा बार बार चल रहा था कि क्या बाबा का मतलब है। फिर ये जो उधार के अर्थ है, एक होता है अपलिफ्टिंग और दूसरा होता है जनरोसिटी भी, जो कल दो दिन पहले का वरदान था ना कि बड़ी दिल, सब में बड़ी दिल रखो, सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल रखो, हर बात में बड़ी दिल रखो, तो वो उधारता जो है, जनरोसिटी दिल की, वो भी जैसे कि हमको बेहद में ले आती है ना। तो इसलिए चाहे हम ये मेडिटेशन आवर का कहें, चाहे एक नेचर बना लें कि रात दिन विचार सागर मंथन चलता रहे, एक नेचुरल चले, क्योंकि जब तक उसका राइट, जैसे मेरा चलता ही रहता है, क्या बाबा का क्या मतलब है दृष्टि की रचना, तो जब मैं बस दो मिनट फ्री होती हूँ फिर चलता है, फिर चलता है, जब तक पूरी क्लियर हो जाए, क्योंकि हमको करना है ना, वो जो कुछ करना होता है वो जितना अंदर में स्पष्ट होता है उतने इजी हम कर पाते हैं ना। अगर स्पष्ट ही नहीं है बात तो अच्छी लगी, करना भी है पर वो स्पष्ट होना भी जरूरी है। तो एक नेचुरल विचार सागर मंथन चलता रहे तो उससे क्या होता है कि जैसे दीदी हमको कहती थी बहती गंगा, गंगा का मतलब बहती रहे। हम लोग को दीदी अचानक कहती थी क्लास करो, हम कहते पहले नहीं बताया, तो कहती है ठहरती गंगा हो क्या, गंगा में तो कोई भी डुबकी लगाए, अभी आपको हम क्लास के लिए पहले क्यों बताएं, बैठो क्लास कराओ, तो बहती गंगा है ना। तो विचार सागर मंथन करने वाले जैसे कि पानी चेंज होता, फ्रेश होता रहता है, कल की परसों की बात नहीं आज की बात, तो गंगा का पानी स्वच्छ माना जाता है ना, तो जो डुबकी लगाए वो भी पावन बन जाता है। तो इसलिए एक नेचर, नेचुरल पुरुषार्थ, नेचुरल विचार सागर मंथन चलना वो बहुत जरूरी है। ओम शांति।